वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक नहूम से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्ययन की बातों को सीखें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि वे सच्चाई को जान सकें कि आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। पिताजी, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उन्हें भी छुटकारा दें, शांति और आनंद दें, ताकि वे भी अपने जीवन में आपको जगह देने पाएं। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, योना की पुस्तक के अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रेमी है, धीरजवंत है और क्षमाशील भी है, परंतु मनुष्य यदि पाप में गिरता जाए तो फिर वह परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। और नहूम कहता है कि यहोवा जल उठने वाला अर्थात जलन रखने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता है। वह विलंब से क्रोध करता है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। और नहूम कहता है पद 3 में, परमेश्वर द्वारा अश्शूर विशेष करके उनकी राजधानी नीनवे को ही दंड देने का सिद्धांत नहीं, वरन संसार को आज और सर्वदा दंड देने का सिद्धांत प्रकट करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं नहूम की पुस्तक 1:3। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला। जी हां, परमेश्वर ने योना को, योना जो एक नबी है, नबी को नीनवे नगर को भेजा कि वह उन्हें उनके भयानक पाप के दंड की चेतावनी दें। वे अपने युग में सर्वाधिक निर्दयी माने जाते थे। परमेश्वर ने उन्हें दंड की चेतावनी दी तो संपूर्ण नीनवे नगर, राजा से लेकर के रंग तक ने पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मन लगाया। योना नबी का संदेश संपूर्ण राष्ट्र में फैल गया और वहां महान परिवर्तन आया। हम कह सकते हैं कि उनमें महान आत्मिक जागृति आई। महान आत्मिक जागृतियों की विशेषता है कि वे अधिक समय नहीं ठहरती हैं। नहुम कहता है कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है। निन्वे एक शताब्दी बाद फिर से अपने कुमार्गों पर आ गया। नहुम कहता है कि समय पूरा हो गया है, दंड आने वाला है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की धार्मिकता उसके दंड देने में प्रकट है। वह क्रोध करने में विलंब करता है। उसने उन्हें दंड देने में 100 वर्ष का विलंब किया। वह दोषी को छोड़ेगा नहीं यदि वे उसकी ओर ना फिरें। इसलिए यदि आप किसी प्रकार के पाप में जीवन जी रहे हैं तो याद रखें कि जब तक आप उसकी ओर नहीं फिरते हैं तो आप भी दंड के भागी हैं। लिखा है कि यदि वे प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण ना करें, क्योंकि उसने उनके पापों का दंड चुकाया है, परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं। उन्हें पापों का दंड अवश्य ही मिलेगा। परमेश्वर धर्मी एवं न्यायी है। मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर की क्षमा हमारी क्षमा से भिन्न है। हम किसी को क्षमा करते हैं परंतु उनके पापों का दंड नहीं भोगते। हमारा क्षमादान छोटा मोटा होता है। परमेश्वर का क्षमादान दंड योग्य, अर्थात यूं कहें कि दंड भोग चुका है। परमेश्वर इस पृथ्वी का न्यायी है। वह सृजनहार ही नहीं, संचालक ही नहीं, वह जगत का नैतिक शासक भी है। परंतु वह भ्रष्ट न्यायी नहीं है। आप उसे घूस दे करके बच नहीं सकते हैं, जैसा कि आप संसार में अपने पापों से या अपने बुरे कर्मों से न्यायालय में पैसे दे करके आप बच जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप उसे अपने पिता के नाम की धमकी भी नहीं दे सकते कि वह आपकी नौकरी के जाने से डरे। आप परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर दुष्ट को अवश्य ही दंड देता है और यिर्मयाह नबी के पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि मनुष्य का मन सबसे अधिक दुष्ट है। हम अपने मन में पाप की गहराई नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर दुष्ट को क्षमा नहीं करेगा। क्षमा के लिए आवश्यक है कि कोई हमारा दंड अपने ऊपर में ले। इसी कारण से उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दिया, प्रभु यीशु। जब कोई देश या मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करे जो प्रभु यीशु में उपलब्ध है, तो परमेश्वर उसे अवश्य ही दंड देगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। जी हां, कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। बवंडर भी उसके अधीन है और उसकी इच्छा पूरी करता है। प्रकृति माता भी उसकी आज्ञा मानती है। वह सृजनहार है, वह तारनहार है और वह न्यायी है। मेरे मित्रों, वही संचालक है। बस उसके हाथ में सब कुछ छोड़ दें और उसमें विश्राम करें। वह भला है, वह अनुग्रहकारी है, वह उद्धार करता है, वह आपके पापों से आपको छुटकारा दे सकता है। यदि आप उसकी ओर मुड़ें, उसकी निकटता में आएं, तो वह आपको शांति भी दे सकता है। नहुम एक अध्याय उसके 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुन्दर भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल, कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। लिखा है उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुन्दर भी निर्जल हो जाते हैं। यह सामर्थ्य तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। यह सामर्थ्य तो परमेश्वर पहले ही प्रकट कर चुका है। उसने लाल सागर में सूखा मार्ग तैयार किया जब इसराइल लोग जा रहे थे, और यर्दन का जल प्रवाह भी उसने रोका था। बाशान, कर्मेल और लबानोन उस देश के 3 उपजाऊ क्षेत्र थे। कर्मेल एस्टुलोन की घाटी है, जिसका मुख्य नगर मगीदो था। यह पृथ्वी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यदि आप लबानोन के तट के सहारे बेरूत होते हुए पुराने सोर नगर के खंडहरों तक जाएं, तो वहां अति सुंदर दृश्य आप देखेंगे। वहां बसंत ऋतु में आप पेड़ों को फूलों से लदा हुआ देखेंगे और लबानोन के पर्वतों पर बर्फ जमी हुई दिखाई देगी। वहां आड़ू, चेरी, केला और संतरे के बगीचे लगे हुए हैं, और वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। नहुम आगे कहता है वहां सूखा पड़ेगा। नहुम एक अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। जी हाँ, परमेश्वर सृजनहार है, वह इस जगत का पालनहार भी है, वही इसे थामे हुए है। इसीलिए लिखा है उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। यह भूकंप और ज्वालामुखी फटने के बराबर में या बारे में नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है, बाढ़, भूकंप आदि सब, परंतु मनुष्य का मरना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि वह नदी के किनारे बस्तियां न बनाए, क्योंकि बाढ़ आती है। यदि मेरा कोई प्रियजन बाढ़ में मर जाता है, तो मैं परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता। हमें बाढ़ संभावित क्षेत्रों में घर नहीं बनाना चाहिए, परंतु हम ही जोखिम उठाना चाहते हैं। परमेश्वर प्रकृति को नियंत्रण में रखता है, परंतु आपदाओं का दोष हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। मनुष्य को सावधान रहना है, सचेत रहना है। नहुम एक अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, और चट्टाने उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। मनुष्य से सीख लिया है कि वह प्रकृति के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। विक्टर ह्योगो नामक लेखक ने 3 अति उत्तम उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास में उसने लिखा है कि समाज मनुष्य का बैरी है। दूसरे में उसने लिखा है कि धर्म मनुष्य का बैरी है। और तीसरे उपन्यास में वह व्यक्त करता है कि प्रकृति मनुष्य की बैरी है। मनुष्य यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज का समाज, आज की सभ्यता, औचित्य, अनुग्रह का मित्र, ये सब कुछ नहीं है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निसंदेह प्रकृति मनुष्य की बैरी है, परंतु वह मनुष्य की मित्र भी तो हो सकती है। यदि आप प्रकृति से युद्ध करते हैं तो आप हार जाएंगे। विक्टर ह्यूगो ने अपने उपन्यास में यही दर्शाया है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। यह प्रश्न निनवे वासियों के लिए था, जिन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया को ठुकरा दिया था। क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? यदि आप उद्धार से रहित हैं, तो मैं यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आप शायद अपनी धार्मिकता और भलाई पर निर्भर हैं। क्या आपको विश्वास है कि आप उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, जो पाप से घृणा करता है और पाप का दंड देना चाहता है? क्या आप उसकी पवित्र उपस्थिति में खड़े होने के योग्य हैं? उत्तर आपको देना है। C.S. लुईस ने एक कहानी लिखी जिसमें वह एक बस यात्रा का उल्लेख करता है। यह बस नरक वासियों को स्वर्ग की यात्रा करवाती है। चालक ने वह भरी हुई बस लाकर स्वर्ग के पास खड़ी कर दी और कि बस 4 बजे घर के लिए रवाना होगी। उनका घर नरक था। 4 बजे सब बस में लौट आए। चालक ने कहा कि यदि कोई वहां रुकना चाहे तो रुक सकता है। वे वहां रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनके लिए वहां स्थान नहीं था। जी हां, पूर्व काल के एक संत ने कहा है, पाप के साथ स्वर्ग जाने की अपेक्षा मैं बिना पाप नरक जाना उचित समझता हूं। फिर से एक बात सुन लीजिए, पाप के साथ स्वर्ग जाने की अपेक्षा मैं बिना पाप नरक जाना उचित समझता हूं। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? यदि आपके पास उद्धारक नहीं है, तो आप पापी रूप में एक पवित्र परमेश्वर के समक्ष कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप खड़े हो पाएंगे? मेरे मित्रों, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसके समक्ष खड़े होने का ही अर्थ है उस प्रेमी में ग्रहण योग्य ठहरना और मसीह में होना। नहुम एक महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है, परमेश्वर पाप का दंड देगा। यदि परमेश्वर पाप का दंड न दे तो उसके साथ गंभीर समस्या है। परमेश्वर के सामर्थ और क्रोध का उल्लेख करके नहुम यहूदा वासियों को आश्वासन दिलाता है कि यदि अश्शूर आक्रमण करे तो उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। यदि आज आप भी परमेश्वर की निकटता में हैं, तो आपके लिए भी सुरक्षा प्राप्त है। नहुम की पुस्तक 1:7 में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। लिखा है, यहोवा भला है। मेरे मित्रों, आप इसे स्मरण रखें। भजनकार कहता है भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। यदि मुक्त किए हुए यह न कहें तो और कोई नहीं जो यह कहेगा। मैं कहूंगा परमेश्वर भला है। मेरे मित्रों, परमेश्वर भला है, यह जानना अच्छा है कि हमारा परमेश्वर भला है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको बचाना चाहता है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो इसका कारण है कि आप उसके पास नहीं आए हैं। वह तो आपका उद्धार करना चाहता है, आपको मुक्ति देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। यह बाइबल का वचन है, यहोवा भला है, परमेश्वर भला है, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मैं अति प्रसन्न हूं कि मैं भवसागर में खो नहीं जाऊंगा। मैं जहां भी जाता हूं मनुष्यों की भीड़ देखकर चकित हो जाता हूं। संपूर्ण संसार में मनुष्यों की भीड़ है। ऐसे में मैं सोचता हूं, काश परमेश्वर मेरा नाम स्मरण रखे और न भूले कि मैं उसमें विश्वास रखता हूं। वचन बड़ी भावन बात कहता है, अपने शरणागतों की वह सुधि रखता है। उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है, अपने हृदय में बसा रखा है। वह आपको जानता है, वह अपने शरणागतों को जानता है, और यही कारण है कि वह उनकी सुधि लेता है। मेरे मित्रों, आज समय आ गया है कि हम अपने सृजनहार, अपने उद्धारकर्ता को पहचान ले, जान ले कि वह हमें पापों से आज भी बचा सकता है, और इस बात को भी जान ले कि वह हमारा न्याय भी करता है, हमारे पापों के लिए हमें दंड भी देता है। और यही बात नहुम यहां पर हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वह हमारी सुधि रखता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आपने अपने जीवन के लिए एक उत्तम निर्णय लिया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु ना, पूरे करता सब अरमान हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम प्यारा नाम, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया, मैं जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया, तू ही बचाए मेरे प्राण, तू ही बचाए मेरे प्राण, यीशु नाम भजल तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे, यीशु नाम भजल तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, माफी का देता है वो दान, माफी का देता है खुदा, यीशु नाम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे, यीशु नाम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम